नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, कार्ल मार्क्स की कैपिटल, अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वॉल्यूम 2। राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना का वो भाग है जो पूंजी के उत्पादन से आगे बढ़कर उसकी गति, वापसी और पुनरुत्पादन को समझता है। वॉल्यूम 1 में मार्क्स ने वस्तु, श्रम और अतिरिक्त मूल्य के आधार पर पूंजीवादी उत्पादन का विश्लेषण किया था। यह दूसरा खंड पूछता है कि उत्पादन में लगी पूंजी बाजार के रास्ते फिर धन के रूप में कैसे लौटती है और यह चक्र पूरे समाज में कैसे चलता रहता है। मार्क्स की मृत्यु के बाद फ्रेडरिक एंगेल्स ने उनकी पांडुलिपियों को संपादित करके इसे प्रकाशित किया। पेंगुइन क्लासिक संस्करण, डेविड फनबाग के अनुवाद और अर्नेस्ट मंडेल की भूमिका के साथ इस कठिन लेकिन केंद्रीय पाठ को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाता है। पुस्तक का उद्देश्य व्यापार की सतही गतिविधियों के पीछे उत्पादन, बिक्री, समय, ऋण और सामाजिक वर्गों के बीच मौजूद संरचनात्मक संबंधों को दिखाना है। यह कोई सरल आर्थिक परिचय नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था की आंतरिक कार्यप्रणाली का क्रमबद्ध सैद्धांतिक अध्ययन है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, धन से अधिक धन तक पूंजी के तीन रूपों का चक्र। मार्क्स के अनुसार पूंजी केवल मशीन, नकद या माल का नाम नहीं है, वह मूल्य है जो बढ़ने की प्रक्रिया में रहता है। वॉल्यूम 2 में पूंजी तीन परस्पर जुड़ी अवस्थाओं से गुजरती है। पहले, धन पूंजी के रूप में पूंजीपति उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति खरीदता है। फिर उत्पादक पूंजी के रूप में श्रम और साधनों का उपयोग करके नया माल तैयार होता है। अंत में वही माल बाजार में बिककर वस्तु पूंजी से फिर धन पूंजी बनता है। लक्ष्य केवल प्रारंभिक धन की वापसी नहीं बल्कि बढ़े हुए धन की वापसी है। इस ढांचे का महत्व यह है कि लाभ को केवल खरीद बिक्री की चतुराई का परिणाम मानने वाली धारणा अधूरी सिद्ध होती है। खुद बिक्री आवश्यक है लेकिन मूल्य वृद्धि का आधार उत्पादन की प्रक्रिया में खोजा जाता है। साथ ही कोई भी चरण रुकने पर पूरा चक्र प्रभावित होता है। माल बिक न पाए, कच्चा माल न मिले, श्रम प्रक्रिया बाधित हो या भुगतान देर से आए तो पूंजी अपने अगले चक्र में प्रवेश नहीं कर सकती। मार्क्स इस तरह कारखाने और बाजार को अलग अलग संसार नहीं मानते, वे एक ही सामाजिक प्रक्रिया के क्रमिक क्षण हैं। यह दृष्टि बताती है कि पूंजीवाद में आर्थिक सफलता उत्पादन क्षमता के साथ साथ माल को धन में बदल पाने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। दूसरा, परिसंचरण समय और टर्नओवर, पूंजी की गति का आर्थिक प्रभाव। वॉल्यूम 2 का एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि पूंजी कितनी तेजी से अपना चक्र पूरा करती है, इससे उसके उपयोग और विस्तार की क्षमता बदलती है। मार्क्स उत्पादन समय और परिसंचरण समय में भेद करते हैं। उत्पादन समय में श्रम से वस्तु बनती है, हालांकि कुछ उद्योगों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण प्रतीक्षा भी शामिल हो सकती है। परिसंचरण समय में माल को बाजार तक पहुंचाना, बेचना और भुगतान प्राप्त करना आता है। इस अवधि में पूंजी उत्पादन में सक्रिय रूप से मूल्य नहीं बढ़ाती बल्कि वापसी की प्रतीक्षा करती है। टर्नओवर का अर्थ है एक निश्चित अवधि में पूंजी का अपना पूरा चक्र कितनी बार समाप्त करना। तेज टर्नओवर वाली पूंजी वर्ष में अधिक बार उत्पादन और बिक्री कर सकती है, जबकि धीमी टर्नओवर वाली पूंजी लंबे समय तक माल, परिवहन या बकाया भुगतान में फंसी रहती है। इसलिए दूरी, भंडारण, परिवहन, संचार, मौसमी बिक्री और भुगतान व्यवस्था आर्थिक रूप से निर्णायक बनते हैं। यह विश्लेषण दिखाता है कि तकनीकी दक्षता भर पर्याप्त नहीं है, बाजार तक पहुंच और वसूली की गति भी प्रतिस्पर्धा की शर्तें तय करती हैं। मार्क्स के लिए परिसंचरण लागतें और देरी व्यक्तिगत प्रबंधन की छोटी समस्याएं नहीं बल्कि ऐसी सीमाएं हैं जो सामाजिक स्तर पर पूंजी संचय की रफ्तार को प्रभावित करती हैं। तीसरा, स्थिर और परिचलित पूंजी, मूल्य हस्तांतरण के अलग रास्ते। मार्क्स स्थिर पूंजी और परिचलित पूंजी के बीच अंतर को केवल लेखांकन की सुविधा के रूप में नहीं बल्कि उत्पादन की वास्तविक गति समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मशीनें, इमारतें और औजार स्थिर पूंजी के प्रमुख रूप हैं। वे कई उत्पादन चक्रों तक उपयोग में रहते हैं और अपना मूल्य धीरे धीरे तैयार माल में स्थानांतरित करते हैं। इसके विपरीत कच्चा माल, सहायक सामग्री और मजदूरी पर अग्रिम किया गया धन प्रत्येक चक्र में खर्च होकर नए रूप में वापस आता है। इन्हें परिचलित पूंजी के अंतर्गत समझा जाता है। यह अंतर बताता है कि किसी उद्यम के पास दिखाई देने वाली संपत्ति और उसके तुरंत उपलब्ध संचालन संसाधन एक ही चीज नहीं है। महंगी मशीन होने पर भी यदि मजदूरी, सामग्री या बिक्री से वापसी के लिए पर्याप्त धन न हो तो उत्पादन रुक सकता है। स्थिर पूंजी का घिसाव, मरम्मत और प्रतिस्थापन भी भविष्य की लागतों को वर्तमान उत्पादन से जोड़ते हैं। दूसरी ओर, परिचलित पूंजी की तेज वापसी उत्पादन को लगातार चलाए रखने के लिए जरूरी है। मार्क्स इस विश्लेषण से पूंजीवादी उद्यम की नकदी, भंडार और उपकरण संबंधी आवश्यकताओं को व्यापक सामाजिक पुनरुत्पादन से जोड़ते हैं। पाठक समझता है कि लाभप्रदता का प्रश्न केवल कुल संपत्ति का नहीं बल्कि उसके अलग अलग रूपों, जीवनकाल और वापसी की लय का प्रश्न भी है। चौथा, सरल और विस्तारित पुनरुत्पादन, पूरी अर्थव्यवस्था का परस्पर संतुलन। पुस्तक के उत्तरार्ध में मार्क्स व्यक्तिगत पूंजीपति के चक्र से पूरे समाज के पुनरुत्पादन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि यदि हर उत्पादन इकाई अपना माल बेचती है तो समाज के स्तर पर कौन किससे खरीदता है और अगले वर्ष उत्पादन के लिए आवश्यक साधन तथा उपभोग की वस्तुएं कैसे उपलब्ध होती हैं? मार्क्स सामाजिक उत्पादन को दो बड़े विभागों में विभाजित करते हैं। पहला विभाग उत्पादन के साधन बनाता है, जैसे मशीनें और कच्चा माल। दूसरा विभाग उपभोग की वस्तुएं बनाता है, जिन्हें लोग अपनी जरूरतों के लिए खरीदते हैं। सरल पुनरुत्पादन में उत्पादन का पैमाना मूलतः समान रहता है और अतिरिक्त मूल्य का उपभोग किया जाता है। विस्तारित पुनरुत्पादन में उसका एक भाग फिर से निवेश होकर उत्पादन का पैमाना बढ़ाता है। मार्क्स की पुनरुत्पादन योजनाएं ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि इन दोनों विभागों के बीच विनिमय के निश्चित अनुपात क्यों जरूरी हैं। यदि उत्पादन साधनों और उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति, मजदूरी, पूंजीपति, उपभोग और पुनर्निवेश के संबंध असंगत हों तो माल बिकने, इनपुट मिलने या उत्पादन जारी रहने में कठिनाई पैदा हो सकती है। ये योजनाएं वास्तविक अर्थव्यवस्था का सांख्यिकीय पूर्वानुमान नहीं है। उनका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि बाजार की अराजक दिखने वाली गतिविधियों के पीछे सामाजिक पुनरुत्पादन की परस्पर निर्भर शर्तें काम करती हैं। अंत में बिक्री की अनिश्चितता और संकट की संभावना, उत्पादन और बाजार का विरोधाभास, मार्क्स वॉल्यूम 2 में संकट का पूर्ण और अलग सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करते, फिर भी वे उन स्थितियों का विश्लेषण करते हैं जिनमें पूंजी का चक्र टूट सकता है। उत्पादन और बिक्री एक ही समय पर नहीं होते। पूंजीपति पहले धन लगाता है, श्रम और सामग्री खरीदता है, माल बनवाता है और बाद में उम्मीद करता है कि बाजार उसे स्वीकार करेगा। इस अंतराल में मांग, कीमत, परिवहन, भुगतान या दूसरे उद्योगों की स्थिति बदल सकती है। इसीलिए माल का उत्पादन अपने आप उसके सफल विक्रय की गारंटी नहीं देता। मार्क्स के विश्लेषण में धन का माध्यम बनना भी महत्वपूर्ण है। वस्तु के बदले तुरंत दूसरी वस्तु लेने के बजाय बिक्री और खरीद अलग हो सकती है। कोई विक्रेता धन प्राप्त करके खरीद टाल सकता है या खरीदार भुगतान करने में असमर्थ हो सकता है। इससे एक इकाई की बिक्री में रुकावट दूसरी इकाइयों के भुगतान और उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। पुनरुत्पादन योजनाओं से यह भी उभरता है कि एक विभाग की कठिनाई दूसरे विभाग तक पहुंच सकती है, क्योंकि सभी क्षेत्र उत्पादन साधनों, मजदूरी और उपभोग के माध्यम से जुड़े हैं। पुस्तक यह दावा नहीं करती कि हर असंतुलन तुरंत ध्वंस बन जाता है, बल्कि वह दिखाती है कि लाभ के लिए संचालित विकेंद्रित निर्णयों के बीच सामाजिक समन्वय स्वतः सुनिश्चित नहीं होता। यही अंतर पूंजीवादी विस्तार को संभव भी बनाता है और अस्थिर भी। निष्कर्ष में, कैपिटल वॉल्यूम 2 उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो पूंजीवाद को केवल कीमतों, उद्यमिता या व्यक्तिगत बाजार निर्णयों के रूप में नहीं बल्कि उत्पादन और विनिमय के जुड़े हुए सामाजिक तंत्र के रूप में समझना चाहते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, श्रम अध्ययन और मार्क्सवादी सिद्धांत के विद्यार्थी इसे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 के बीच अनिवार्य कड़ी के रूप में पढ़ सकते हैं। आर्थिक संकट, आपूर्ति श्रृंखला, भंडार, नकदी प्रवाह, ऋण और बाजार विस्तार पर विचार करने वाले पाठकों को भी इसकी अवधारणाएं उपयोगी बौद्धिक उपकरण देती हैं। इस पुस्तक का व्यावहारिक लाभ तत्काल निवेश सलाह देना नहीं है। इसका लाभ यह है कि यह रोजमर्रा के व्यावसायिक शब्दों जैसे लागत, स्टॉक, बिक्री, मशीन और भुगतान को सामाजिक संबंधों और समय की व्यापक संरचना में रखती है। मार्क्स दिखाते हैं कि किसी कंपनी की सफलता का प्रश्न पूरी अर्थव्यवस्था में माल, श्रम और धन के प्रवाह से अलग नहीं किया जा सकता। यही बात इसे सामान्य अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों से अलग बनाती है, जो अक्सर उत्पादन, बाजार और वितरण को अलग अध्यायों में बांट देती है। पुस्तक कठिन है क्योंकि इसका तर्क क्रमिक है और इसकी पांडुलिपियां मार्क्स के जीवन काल में अंतिम रूप नहीं पा सकी, फिर भी इसकी विशिष्टता इसी कठोरता में है। यह पूंजी को स्थिर वस्तु नहीं, लगातार रूप बदलने वाली प्रक्रिया मानती है। धैर्यपूर्वक पढ़ने पर वॉल्यूम 2 यह समझ विकसित करता है कि आर्थिक व्यवस्था का पुनरुत्पादन किन शर्तों पर चलता है और उन्हीं शर्तों में रुकावट तथा संकट की संभावना क्यों निहित रहती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कार्ल मार्क्स आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।